नल और दमयंती के अमर कथा के तीसरे भाग में हमने सुना कि किस प्रकार राजा नल के चले जाने के बाद दमयंती भटकते हुए किसी प्रकार चेदी देश के राजा सुबाहु के महल में पहुंच गई। कथा के चौथे भाग में हम सुनेंगे दमयंती को छोड़ देने के बाद राजा नल के साथ क्या क्या हुआ। भाग चौथा। नल जब दमयंती को छोड़कर जा रहे थे तो रास्ते में जंगल में आग लग गई। उस आग में से किसी के चिल्लाने की आवाज आई, राजा नल मुझ पर कृपा करो, राजा नल मुझे बचा लो। नल दौड़कर उस जंगल की आग में घुस गए और देखा कि एक नाग आग के बीच में कुंडली मारे पड़ा हुआ है। उसने नल से कहा, राजन मैं करकोटक नाम का सर्प हूं। नारद ऋषि को धोखा देने के कारण उन्होंने मुझे शाप दिया था कि जब तक राजा नल मुझे नहीं बचाएंगे तब तक मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं पाऊंगा। अब आप कृपा करके मेरी रक्षा करो, मैं जीवन भर के लिए आपका मित्र बन जाऊंगा और आपके हित में ही काम करूंगा। नल ने उसे आग से बचाकर बाहर निकाला। नल जब करकोटक को जमीन पर रखने लगे तो करकोटक ने कहा, आप मुझे ऐसे ही जमीन पर मत रखिए, मुझे लेकर कुछ कदम चलिए। नल करकोटक को हाथों में उठाकर कदम गिन गिनकर चलने लगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जैसे ही नल ने 10 कहा, करकोटक ने उन्हें डस लिया। करकोटक के विष के प्रभाव से नल का रूप बदल गया। उसने आश्चर्यचकित नल से कहा, राजन तुम्हें कोई पहचान न सके इसलिए मैंने तुम्हारा रूप बदल दिया है। कलयुग ने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया है और अब वह भी मेरे विष के कारण तुम्हारे शरीर में बहुत कष्ट में रहेगा। अब तुम पर किसी भी विष का प्रभाव नहीं होगा और युद्ध में हमेशा तुम्हारी विजय होगी। तुम अपना नाम बाहुक रख लो और राजा ऋतुपर्ण की नगरी अयोध्या में जाओ। राजा ऋतुपर्ण द्युत क्रीड़ा में बहुत कुशल हैं। तुम उनको अपने घोड़ों को सिखाने की विद्या के बदले में उनसे जुए के सारे दांव पेच सीख लो। जुए का रहस्य जान लेने के बाद तुम फिर से पुष्कर से अपना सारा धन और राज्य वापस जीत लेना। इस प्रकार तुम्हें तुम्हारी पत्नी, पुत्र और पुत्री भी मिल जाएंगे। जब तुम पुनः अपने रूप में वापस आना चाहो तो मेरे दिए ये वस्त्र पहन लेना। यह कहकर करकोटक ने नल को 2 वस्त्र दिए और वहां से चला गया। नल वहां से चलते चलते 10 दिन बाद राजा ऋतुपर्ण की राजधानी अयोध्या में पहुंचे। उन्होंने वहां राजदरबार पहुंचकर निवेदन किया, राजन मेरा नाम बाहुक है, मैं घोड़ों को हांकने और तरह तरह की चालें सिखाने का काम करता हूं। घोड़ों को शिक्षा देने में मुझसे निपुण इस विश्व में कोई और नहीं है। रसोई बनाने में भी मैं अत्यंत कुशल हूं। इसके अलावा आपके द्वारा दिया गया और भी कोई काम करने का पूरा प्रयास करूंगा। आप मुझे अपने यहां काम पर रख लीजिए। ऋतुपर्ण ने नल की बात सुनकर उनसे कहा, बाहुक तुम भले आए, मुझे तेज गति के रथ में सवार होना बहुत पसंद है। तुम कुछ ऐसा करो कि मेरे घोड़ों की गति तेज हो जाए। मैं तुम्हें अश्वशाला का अध्यक्ष नियुक्त करता हूं। इस काम में वार्ष्णेय और जीवल भी तुम्हारा साथ देंगे। इस काम के लिए तुम्हें दर माह 10,000 सोने की मुद्राएं दी जाएंगी। तुम यहां आनंद से रहो। राजा ऋतुपर्ण से इस प्रकार काम मिलने पर नल बाहुक के रूप में वार्ष्णेय और जीवल के साथ अयोध्या में रहने लगे। नल प्रतिदिन दमयंती को याद करके सोचते कि दमयंती पता नहीं कहां है और किस हाल में है। वो हर समय भगवान से दमयंती के लिए प्रार्थना करते। जब विदर्भ नरेश भीमक को इस बात का पता चला कि उनके दामाद जुए में अपना सारा राज्य हार कर दमयंती के साथ वन वन भटक रहे हैं, तब उन्होंने ब्राह्मणों को बुलवाया और उन्हें बहुत सा धन देकर कहा, आप लोग इस धरती के कोने कोने में जाइए और मेरी पुत्री दमयंती और दामाद नल को ढूंढ कर यहां ले आइए। ऐसा करने वाले ब्राह्मण को मैं 1,000 गायें और ढेर सारी संपत्ति दूंगा। यदि आप लोग उन्हें नहीं ला सके तो उनका पता ही ला दे। नल और दमयंती का पता बताने वाले को मैं 10,000 गायें दूंगा। ब्राह्मण लोग नल और दमयंती का पता लगाने के लिए निकल पड़े। सुदेव नामक एक ब्राह्मण नल दमयंती का पता लगाते हुए एक दिन चेदी नरेश की राजधानी में पहुंच गया। एक दिन राजा के महल में एक पुण्य हवन हो रहा था और सुदेव भी वहां उपस्थित था। दमयंती और सुनंदा भी उस हवन को देख रही थी। उस समय सुदेव की दृष्टि दमयंती पर पड़ी। सुदेव दमयंती को देखते ही पहचान गया और उसके पास जाकर बोला, विदर्भ नंदिनी, मैं तुम्हारे भाई का मित्र सुदेव हूं। राजा भीमक की आज्ञा से मैं तुम्हें ढूंढते हुए यहां आया हूं। विदर्भ में तुम्हारे माता पिता और भाई सकुशल हैं। तुम्हारे दोनों बच्चे भी वहां विदर्भ देश में अच्छे से हैं, परंतु तुम्हारे वियोग से सभी लोग परेशान हो रहे हैं। तुम्हें ढूंढने के लिए सैकड़ों ब्राह्मण पूरी पृथ्वी में घूम रहे हैं। दमयंती ने सुदेव को पहचान लिया और उससे एक एक कर सभी का कुशल मंगल पूछने लगी और भावुक होकर रोने लगी। सुनंदा ने दमयंती को रोते हुए देखा तो वो जाकर राजमाता को बुला लाई। राजमाता ने ब्राह्मण से पूछा, महाराज, यह कौन है? किसकी पत्नी है? किसकी पुत्री है? तुमने इसे कैसे पहचाना? सुदेव ने राजमाता को नल दमयंती का सारा वृत्तांत बता दिया। सुनंदा और राजमाता दोनों सुदेव की बातें सुनकर रो पड़ी और उन्होंने दमयंती को गले से लगाया। राजमाता दमयंती से बोली, दमयंती, तुम मेरी बहन की पुत्री हो। तुम्हारी माता और मैं दोनों दशारण देश के राजा सुदाम की पुत्री है। तुम्हारा जन्म हमारे पिता के घर में ही हुआ था। मैंने तुम्हें तभी देखा था। तुम इसे अपना ही घर समझो और जब तक तुम्हारा मन करे यहां सुख से रह जाओ। दमयंती बहुत खुश हुई और अपनी मौसी को प्रणाम करके कहा, मां, आपने मुझे पहचाना नहीं तो क्या हुआ? मैं यहां बेटी की तरह ही रही हूं। आपने मेरी रक्षा की और मुझे रहने के लिए घर दिया। मुझे इस बात पर कोई संदेह नहीं कि मैं यहां आगे भी सुख से ही रहूंगी। परंतु मैं बहुत दिनों से भटक रही हूं और मेरे बच्चे अपने माता पिता के वियोग से बहुत दुखी हैं। मैं उन्हें और दुख नहीं दे सकती। मेरा मन भी उनसे मिलने को व्याकुल हो रहा है। आप मेरा विदर्भ देश जाने का प्रबंध कर दीजिए। मैं सुदेव के साथ अपने माता पिता के घर अपने दोनों बच्चों के पास जाना चाहती हूं। राजमाता ने अपने पुत्र से कहकर दमयंती के विदर्भ जाने का प्रबंध कर दिया। एक बड़ी सेना के संरक्षण में दमयंती और सुदेव विदर्भ चले गए। विदर्भ में दमयंती का बड़ा सत्कार हुआ और दमयंती भी अपने पुत्र पुत्री माता पिता भाई और सखियों से मिलकर अत्यंत प्रसन्न हुई। राजा भीमक को अपनी पुत्री के मिल जाने से अत्यंत खुशी हुई और उन्होंने सुदेव को 1,000 गायें, एक गांव और ढेर सारा धन दिया।